नारायण नारायण नारायण। स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम। आज से 30 तारीख तक स्वामी जी प्रातः स्मरण और स्वाध्याय दोनों करने की कृपा करेंगे और प्रातः प्रवचन में कठोर निषेध पर स्वामी जी प्रवचन करेंगे। स्वामी जी के श्री चरणों में पुनः प्रणाम। जय श्री कृष्ण।
ओ वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। समस्त संसार के कण कण में अनुस्थित सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का स्मरण करते हुए और यह परोपकारार्थ संस्था जिस महापुरुष के द्वारा संस्थापित हुई है, ऐसे अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन प्रेमपुरी जी महाराज, उनके भी चरण कमलों का स्मरण करते हुए और जिन गुरुजनों से हमने विद्या प्राप्त की है, ऐसे गुरुजनों का भी स्मरण करते हैं। और यहां पर सभी उपस्थित आत्मरूप साधक शक्ति रूपा मातृगण ये हम कहना चाहते हैं कि ऐसी चर्चा होनी चाहिए, ऐसा विचार होना चाहिए जिससे कि हम साधना मार्ग में आगे बढ़ सके। नहीं तो प्रतिवर्ष बालक यदि छात्र एक ही क्लास में बैठता हो, आगे ना बैठता हो, तो समय उसका व्यर्थ जा रहा है। ठीक इसी प्रकार तो हम लोगों का भी क्लास है, ये प्रतिदिन क्लास ही समझ लो। इसलिए एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए और ऐसा ही विचार करना चाहिए शास्त्र का। तो गत वर्ष भी हम लोगों ने कठोपनिषद के ऊपर ही विचार किया था। इसी वर्ष भी कठोपनिषद का ही अभी प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहले इस ग्रंथ का संक्षिप्त परिचय करा देते हैं, जिससे कि यह विचार आपके अंतःकरण में आ सके। हमारी सनातन परंपरा, हमारी विचारधारा का मूल शास्त्र ही है। किसी महापुरुष की वाणी मात्र नहीं है, हमारी परंपरा कोई नूतन परंपरा नहीं है। लोगों की परंपरा तो किसी के 100 साल की होती है, किसी की 500 साल, किसी की 1000, ज्यादा से ज्यादा हो। हमारी परंपरा ऐसी नहीं है, इसलिए हमारी परंपरा को सनातन परंपरा बोलते हैं। जब से संसार है तब से हमारी परंपरा है। क्यों? हमारी परंपरा का आधार कोई महापुरुष का वाक्य नहीं, जैसे ईसा मसीह है, बुद्ध है, उनकी परंपरा सनातन नहीं है। तो हमारी परंपरा का मूल हो गया शास्त्र। शास्त्र वेद को कहा जाता है। तो वेद के विषय में आप लोग जानते ही है, फिर भी कुछ लोग ना जानते होंगे। चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जैसे आप अनुभव में ले लो, हमारे अंतःकरण में भी तीन प्रकार की धारा चल रही है। एक कर्म की धारा, एक भक्ति भाव भावना की धारा, एक ज्ञान की धारा है। ठीक इसी प्रकार वेद में भी तीन की धारा है। ये जो बीज वाली धारा है, भाव की धारा है। तो भाव की धारा जैसी होगी, आपकी भावना जैसी होगी, और कर्म भी आपको उस फल की ओर ले जाएगा। जिस भावना से आप कर्म करेंगे, और कर्म का फल भी आपको ऐसे ही मिलता है। जैसे आप देखते हैं, कोई सैनिक हो और सीमा पर तैनात किया गया, उसको 10 आदमी को गोली से भून देता है, उनको क्या सजा मिलती है? नहीं मिलती है। क्यों? उनकी भावना अलग है, देश की रक्षा करना है, हमारा ये कर्तव्य है। उसको सजा नहीं मिलती है, उनको तो उल्टा महावीर चक्र मिलता है, पुरस्कार मिलता है। लेकिन वही व्यक्ति यदि अन्य जगह पर चाकू भी दिखा देगा तो उसको सजा मिल जाती है। तो एक जगह पर देखो पुरस्कार मिल रहा है, एक जगह पर जो है उसको सजा मिल रही है। तो अंतर ही वह भावना है। एक में देश रक्षा की भावना है, दूसरे में स्वार्थ की भावना है। गला काट देंगे तो कुछ मिलेगा। इस पे अगर डॉक्टर का भी ले लो उदाहरण है, ऐसे कोई माता हो तो पति के लिए वो माता पत्नी हो जाती है। पत्नी मतलब जानते हैं क्या होती है? कल विवाह कर लेने मात्र से पत्नी नहीं होती है, पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, पाणिनि महर्षि ने कहा है, पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, जिसके साथ यज्ञ के लिए आपका संबंध बनता है। किसी स्त्री को, अवैध स्त्री को ला करके बैठा देंगे यज्ञ में, तो उससे आपको कर्म का बल मिलने वाला नहीं है। इसलिए यज्ञ संबंधी स्त्री, इसका नाम होता है पत्नी, यज्ञ संबंधी स्त्री। और किसको ज्यादा फल मिलेगा भाई, पति को मिलता है कि पत्नी को मिलता है? दोनों को बराबर मिलता है। यज्ञ संबंधी पति भी होता है, पत्नी भी होती है। देखो, एक ही स्त्री ही पति के लिए पत्नी हो गई, और उसका बालक आ गया गोद में, तब भी पत्नी होगी क्या? माता बन जाती है। उसका पिता आ गया तो वो जो है पुत्री हो जाती है। और मान लो कि भाई कोई योगी आ गया, वास्तविक योगी हो, सन्यासी हो, तो उसके लिए तो हाड़ मांस का पुंज और क्या है, हाड़ मांस का पुंज से अतिरिक्त तो कुछ दिखाई नहीं देगी। और वास्तविक ब्रह्मज्ञानी, जिसको ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, सर्वम खलिदम ब्रह्म, उसको शरीर नहीं दिखाई देगा, वो ब्रह्म दिखाई देगी। और कोई मान लीजिए साधक हो, भक्त, उसको जो है शक्ति दिखाई देगी, देवी दिखाई देगी। और बाघ आ गया तो जो है उसको तो भोजन दिखाई देगी। तो आप विचार कर लो, एक ही पदार्थ अनेक प्रकार का हो जाता है, एक दृष्टि है, इसको कहते हैं भाव। जैसा भाव होता है आपका, ऐसा ही आपको कर्म का फल मिल जाएगा। इसी प्रकार ज्ञान भी है, ज्ञान में दीजिए, आपका जैसा भाव होगा, कि भाव का संबंध दोनों के साथ है, तीन प्रकार की धारा होगी ना, बायां तरफ ले लो कर्म की धारा, दायां तरफ ज्ञान की धारा, बीच में एक धारा होती है भाव की धारा। इसलिए भाव प्रबल होता है, कि अनुभव में ले लो, तो जैसा भाव होता है ऐसा कर्म का फल मिलता है, उसी प्रकार ज्ञान का ही फल मिलेगा आपको ऐसा। इसलिए आप सत्संग में सुनने आते हैं, इसका ही फल है, लेकिन सबको समान फल नहीं मिलता है, ये प्रत्यक्ष है। इसलिए कोई साधक आता है कि घर में कोई झगड़ा हो गई, पति के साथ, बहू के साथ, ये चलता रहता है, इसलिए मन अशांत हो जाता है, तो सोचती है कि चलो भाई संत के पास चलते हैं, प्रेमपुरी आश्रम चलते हैं, कुछ सुनेंगे, संत की वाणी को सुनेंगे, कुछ मन शांत होगा। मन शांत होगा इतना ही उसका फल है, उससे ज्यादा फल होता नहीं है। और कोई संत की वाणी सुनने पर हमारी श्रोत्रेन्द्रिया पवित्र होगी, कुछ पुण्य होगा। इसलिए वेदांत का फल तो ज्ञान है ही मुख्य, आपको समझ में आवे अथवा ना आवे, वेदांत का फल पुण्य भी होता है। इसलिए महापुरुष ने खूब विचार किया है, दिने दिने तो वेदांत श्रवणात भक्ति सन्निहितात, गुरु शुश्रूषया लब्धात कृच्छ्रासीति फलम लभेत। कृच्छ्रा व्रत होता है ना, कृच्छ्रा व्रत है ना, 80 बार कृच्छ्रा व्रत करने पर जो फल मिलेगा वो वेदांत को सुनने पर ही फल मिल जाता है, समझ में न आने पर ही फल मिलता है, पुण्य फल मिलता है। लेकिन कैसे सुनना है, भक्ति सन्य, भक्ति मतलब श्रद्धा, आस्तिक बुद्धि, गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, हमको समझ में आवे अथवा ना आवे, शास्त्र जो बोल रहा है, गुरु जो बोल रहा है वो सही है, इतनी श्रद्धा हो जावे तो आपको पुण्य मिल जाएगा वेदांत सुनने से। ये नियम बताया गुरु शुश्रूषा, जिससे हम सुनते हैं उसकी सेवा भी होनी, इसलिए हम ये बता रहे थे भाव जैसा होगा ऐसा आपको ये ज्ञान का फल भी मिलेगा। इसलिए वेदांत हम सुनेंगे तो कुछ पुण्य मिलेगा, इसलिए भी कोई आता है, और ऐसा भी कोई आता है मान लो सब जो असावधानी और सावधान हो जाएंगे तब तो सुनने में लगे हैं तो चप्पल वगैरह उठा कर ले जाए, यहां तो नहीं होगी क्योंकि गाढ़ है, अन्यत्र हो जाता है, चप्पल जूता उठा कर ले जाता है, थोड़ा सुनेगा उठा कर ले जाएगा। तो वेदांत सुनने का फल चप्पल मिलना ये भी हुआ कि नहीं हुआ, है ना? कोई पकड़ मार कर लेता है सब सुन रहे हैं जाते समय। लेकिन ऐसा भी कोई आता है जो केवल ज्ञान के लिए आता है, कोई मान सम्मान ऐसे कोई नहीं। तो हमारा जो जीव भाव है इसको शिव भाव बनाने के लिए, शिव स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के लिए ऐसा भी कोई आता है। देखो एक ही वेदांत है तो वेदांत श्रवण करने का फल अनेक हो गया, मन की शांति भी हो गई, पुण्य भी हुआ, जूता चप्पल ये भी हुआ और ज्ञान भी हुआ, मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। इसलिए ये अनुभव में आप ले लो, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि वेदांत जो है ना ये अनुभव की बात होती है, केवल सुनने मात्र में सीमित नहीं होना चाहिए, ठीक है विनोद भी होना चाहिए, है ना? मन थोड़ा सा एकाग्र हो जाए इसलिए विनोद भी होता है, मन न उब जावे, लेकिन विनोद का तात्पर्य विनोद में नहीं होता है। तो जैसे हमारे अंतकरण में तीन प्रकार की धारा है ना, कर्म की धारा, भक्ति की धारा और ज्ञान की धारा है, ठीक इसी प्रकार हमारे जो चार वेद होते हैं, चार वेद ऋग यजुर् साम अथर्व, ये चार वेदों में भी तीन प्रकार की धारा है। एक कर्म की धारा है, मतलब कर्म के प्रतिपादन है, आप लोग जानते हैं सब। तो कुल मिलाकर एक लाख मंत्र है संपूर्ण वेदों में, उनमें से जो 80,000 मंत्र होते हैं वो कर्म को प्रतिपादन करने वाले हैं, वहां पर कर्म की धारा चल रही है, और एक भक्ति की धारा है जिसको उपासना बोलते हो। तो उपासना को प्रतिपादन करने वाले मंत्र होते हैं कितने, बराबर ना? 16,000 हो गए। तो लोगों को पता नहीं होता कि उपासना हम कैसे करेंगे, वही लोगों को इतना ही पता नहीं कैसे हम बैठेंगे ये भी पता नहीं होता है, भोजन कैसे करेंगे ये भी पता नहीं होता है, बहुत चीजें होती है जानते नहीं हम। तो न जान करके करेंगे तब भी दोष तो लगेगा, है ना? न जानकर आप बोलेंगे कोई झूठ निकल गई तो दोष तो लगेगा ही। तो ये 4,000 जो मंत्र बाकी रह गए ये ज्ञान के, यहां पर ज्ञान के द्वारा है, उसको कहते हैं उपनिषद। तो हम व्यवहार में देखते हैं लोगों में कई प्रकार की प्रवृत्ति होती है, इस बात को आप समझ लो तब आरंभ करेंगे इसको। तो व्यवहार में हम देखते हैं कोई व्यक्ति काम करता है तो पूछे भी इतना काम क्यों करते हो, 12 घंटा 14 घंटे तो क्या बोलेगा भाई, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे, कैसे रोटी मिलेगी, है ना। और कोई खा रहा है मान लीजिए, क्यों खाते होते ना, पर नहीं खाएंगे तो जाएंगे कैसे, ये चलता रहता है। इसलिए पंचदशीकार कहते हैं कुर्वते कर्म भोगाय, कर्म कर्तुम च भुंजते, है ना। खाने के लिए काम करता है और खाता है काम करने के लिए, है ना। इस प्रवृत्ति को बोलते हैं स्वार्थ प्रवृत्ति, स्वार्थ रहता है, माता पिता का स्वार्थ रहता है, है ना, बालक का भी स्वार्थ रहता है, सबका स्वार्थ है ये, इसलिए ध्यान में दीजिए। एक इसको बोलते हैं स्वार्थ प्रवृत्ति, कुछ मिलेगा इसलिए कुछ काम करते हैं। लेकिन एक मोह प्रवृत्ति होती है, मोह प्रवृत्ति, है ना। आप अनुभव करना स्वार्थ प्रवृत्ति बड़ी है कि मोह प्रवृत्ति बड़ी है, आपको दृष्टांत बताते हैं। इसलिए मनुष्य का दृष्टांत नहीं दे रहे हम, अक्सर मनुष्य की प्रवृत्ति स्वार्थ होती है इसलिए हम उसका दृष्टांत नहीं दे रहे, पशु पक्षी का दृष्टांत दे रहे। मान लीजिए कोई पक्षी है, अपने छोटे छोटे बच्चे के लिए कहीं दूर दरार से छोटे छोटे कण को चुन करके लाती है और बच्चे के मुख से वो छोड़ती है, उसको क्या मिलेगा, कुछ मिलता नहीं है उसको। तो उनको तो मालूम है कि बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो हमको छोड़कर चले जाएंगे, मालूम है कि नहीं, मालूम तो है। इसी बार गौ दूध देती है बछड़े के लिए, गौ जानती है कि बछड़ा बड़ा हो जाएगा तो मुझे छोड़कर चला जाएगा, है ना। लेकिन माता पिता जानते हैं कि आगे सेवा करेगा कि नहीं करेगा बालक, अलग की बात है, अलग बात है। लेकिन अभी जो माता पिता करते हैं बच्चे के लिए, काहे के लिए करते हैं, मेरी सेवा करेगा भाई, सेवा करेगा नहीं करेगा तो परमात्मा जाने। उनका जैसा भोग है, कर्म है, ऐसा ही फल मिलता है, और कर्मों को और फल को तो परमात्मा जानता है, जीव तो जान नहीं सकता, माता पिता जान नहीं सकते। इसको बोलते हैं मोह प्रवृत्ति, पक्षी की प्रवृत्ति हो रही है बच्चे के लिए, है ना, बछड़े के लिए प्रवृत्ति हो रही है गौ की, उसको स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, अपितु उसका मोह है, वो मोह के कारण ही प्रवृत्त हो जाती है, पक्षी है गौ है ना। तो हमारी प्रवृत्ति यदि स्वार्थ हो, अब देखो विचार करो, स्वार्थ प्रवृत्ति बड़ी हुई कि मोह प्रवृत्ति बड़ी हुई, मोह प्रवृत्ति बड़ी हुई क्योंकि उनको स्वार्थ नहीं है। देखो अथवा ये समझ लो, मनुष्य में दो प्रकार की प्रवृत्ति है, स्वार्थ भी है और पुत्र के प्रति मोह भी है। लेकिन पशु पक्षी में स्वार्थ नहीं है, केवल मोह है, तो एक दोष जो है हमारे में ज्यादा हो गया और एक दोष उनमें कम हो गया, तो कौन बड़े है बोल, पशु पशु पक्षी बड़े कि हम बड़े हुए। हम तो अपने आप को बड़े समझदार समझते, इतने पढ़े लिखे हम, है ना। लेकिन एक प्रवृत्ति होती है, दो प्रवृत्ति हो गई, एक स्वार्थ प्रवृत्ति, दूसरी है मोह प्रवृत्ति। तीसरी एक प्रवृत्ति होती है जिसका नाम कर्तव्य, हाँ ये ध्यान में देखिए, ये कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य होता है माता के प्रति कर्तव्य, पिता के प्रति कर्तव्य, इसलिए जो बालक जो जाता है ना उसको हितोपदेश पढ़ाते थे पहले, जिसको आजकल क्या बोलते हैं अंग्रेजी में फास्ट प्राइमरी, बराबर ना, आजकल उसको फास्ट प्राइमरी बोलेंगे, है ना। तो फास्ट प्राइमरी के कोर्स में पहले पढ़ाते थे एक पुस्तक है हितोपदेश, उस पुस्तक का नाम हितोपदेश। तो सबसे पहले वहां पर उपदेश ये किया जाता था, मातृ देवो भव है कि नहीं, उसके बाद पितृ देवो भव, पहले किसका नाम आया, पितृ देवो का आया कि मातृ देवो आया, पिता का क्यों नहीं आया, है ना, बड़ा विलक्षण है, विलक्षण प्रश्न हो गया है ना। सीताराम बोलते हो कि राम सीता बोलते हो? राम सीता क्यों नहीं बोलते हो? राधे श्याम बोलते हो? श्याम राधे तो कोई बोलता नहीं है ना। अधिक ऋण हमारे ऊपर जिसका है ना, उसका नाम पहले लिया जाता है ना। इसलिए जो अधिक पूजनीय होता है ना, उसका नाम पहले लिया जाता है। व्याकरण में भी ऐसे चलता है। अभ्यर्हितम च, महर्षि कात्यायन ने कहा, जो अधिक पूजनीय होगा ना, उसका नाम द्वंद समास में पहले होता है, इसलिए माता पिता बोला जाता है, पिता माता नहीं बोला जाता है। इसलिए हितोपदेश का पहला पाठ यह होता है, मातृ देवो भव, मतलब माता तुम्हारी देवी है, माता को देवता के रूप से, देवी के रूप से तुम पूजा करो। इसलिए माता के प्रति तुम्हारा कर्तव्य है, पिता के प्रति तुम्हारा कर्तव्य है, आचार्य के प्रति तुम्हारा कर्तव्य है, आचार्य देव कहा गया। तो ये कर्तव्य होता है। तुम कर्तव्य बुद्धि से स्वार्थ को छोड़ करके, मोह को छोड़ करके यदि हम प्रवृत्त होंगे तो हमारी प्रवृत्ति को कहेंगे कर्तव्य प्रवृत्ति। यही बात यहां पर सबसे पहले कह रहे कठोपनिषद। तुम कुछ कामना लेकर के प्रवृत्त होगे तो पकड़े जाओगे। जैसे पकड़ा गया नचिकेता का पिता, हम व्यवहार में देखते हैं, जैसे पशु पक्षी का आप लोगों को दृष्टांत दिया, पशु नहीं आ रहा है आपके सामने तो क्या दिखा दो? चारा दिखा दो, समझ में ना। तो चारा दिखा दो तो फिर वो पशु आ जाता है आपके सामने। आज चारा से भी नहीं आ रहा है तो क्या करो? डंडा दिखाओ। तो डंडा दिखाओ तो जो है आ जाती है, गौ आ जाती है। हाँ, देखो प्रवृत्ति हो रही है चारा से और डंडा से, और हम लोग भी चारा और डंडे से प्रवृत्त होते हैं। कैसे? यहां पर चारा क्या है? लोभ। धर्म है ना, लोभ दिखा दिया भाई। तुमको 10,000 रुपया दे देंगे, झूठ बोल दो तो झूठ बोलने में क्या परेशानी है? एक झूठ में 10,000 रुपया मिल रहा है तो झूठ बोल देते हम, है ना। यदि पैसा से यदि नहीं हुआ तो क्या करेंगे? भय दिखा देंगे, हमको मार देंगे, ये कर देंगे, जेल में डाल देंगे, तुम झूठ बोल देते हैं, है ना। ये हो गया चारा। चारा कौन हो गया? लोभ हो गया चारा। चारा धन में ना, इसलिए हमको तो अनुभव होता है। इसलिए महात्मा ऐसे नहीं बनते हैं, कुछ अनुभव करके ही महात्मा बनते हैं। तो क्या होता है, ये माया जो होती है ना, ये भी पहले जब घर छोड़ता है, साधु जब घर छोड़ता है ना, तो माया तो घबरा जाती है, देवता लोग तो घबराते ही, तो माया भी घबरा जाती है। इसलिए सबसे पहले वो क्या फेंकेगी? चारा फेंकती है, चारा। तो चारा क्या है कि बढ़िया बढ़िया वस्तु दिला देगी, है ना। इसलिए आप लोग भी ना चारा ही फेंकते हो, है ना। साधु को क्या फेंकते हो? ये माया ही फिकाती थी, आप नहीं फेंकती, माया ही फिकाती है ना। कोई दक्षिणा दे देंगे, बढ़िया भोजन दे देंगे, माला चढ़ा देंगे, देखो माला है, ये भी चारा है, ये हम नहीं समझते। इसका फल आप लोग को मिलेगा, लेकिन हमारे लिए क्या है? चारा है ये, तो माया देती है भाई। मान सम्मान आरती उतारेंगे, है ना, इसलिए इसमें लोग फंस जाते हैं, इस चारा में, और क्या। इसलिए लोग इसलिए उपाधि को प्राप्त करते हैं, विद्वान बन जाते हैं, मल्लेश्वर वगैरह जो भी हो, क्योंकि चारा हो रहे हैं ना, चारा मिल रही है बढ़िया बढ़िया। इसी में यदि कृतार्थ हो गया, अरे भाई यही तो है जीवन, मर क्या है, यही कृतकृत्य है। तो माया भी खोज हो जाती है। अब तो ये बन गया, ये चारा हो गया, देखो आ थोड़ा सा वैराग्य हो गया, एक झटका मारा तो ये झटका मार कर तो घर से निकल गया साधु है। तो पहले चारा दिखाई माया ने, आ चारा से भी यदि पास में नहीं आया महात्मा, आप लोग भी समझ लो है ना, इसलिए एक झटका मार करते आप प्रेमपुरी में आ रहे हो, है कि नहीं। तो ये भी ऐसा वैराग्य ही है। तो ध्यान में दीजिए, तो चारा से जो नहीं फंसा ना साधक, और फिर भय दिखा देती है माया, अरे भी तुम घर छोड़ रहे हो, कहाँ रहोगे बताओ, कहाँ रहोगे है ना, कौन तुम्हारी बुढ़ापे में सेवा करेगा। चलो आश्रम मिल गया, बढ़िया मिल गया है ना, फिर जो भय दिखाती है कहाँ कैसे करोगे भी बुढ़ापे में। जिसके पास संपत्ति है चेला बनने के लिए तो बहुत आते हैं, चेले तो मिल जाएंगे पास में पद प्रतिष्ठा हो तो, लेकिन पद प्रतिष्ठा नहीं है, धन नहीं है तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा। और भय हो जाता है साधु को, हमको भी कुछ करना चाहिए, बैंक बैलेंस वगैरह कुछ हमको भी करना चाहिए, तब ऐसा हो जाएगा तो फिर माया खुश हो जाती है ना। तो पशु जैसे चारा और डंडा प्रवृत्त होता है, इसी प्रकार हम भी यदि चारा और डंडे से, मतलब लोभ और भय, तो दोनों में क्या अंतर हुआ है ना, पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं हुआ।
इसलिए सबसे पहले यही पाठ पढ़ाते थे कि सबके प्रति तुम्हारा कर्तव्य है,
कर्तव्य बुद्धि से, और ज्ञानी की प्रवृत्ति वो बात तो अलग है, उसका आपको हम दृष्टांत नहीं दिए। ज्ञानी की प्रवृत्ति का कोई हेतु नहीं होता है, फिर ज्ञानी क्यों उपदेश करता है, वास्तविक ज्ञानी की बात कर रहे हैं। तो ज्ञानी की प्रवृत्ति का हेतु दूसरा कोई नहीं होता है, वो तो कृपा है बस, साधक के प्रति कृपा के कारण, जैसे ईश्वर की कृपा होती है हम लोगों के ऊपर, इसलिए ईश्वर की प्रवृत्ति होती है हम लोगों के लिए। शास्त्र को इसलिए प्रकट किया, ईश्वर को क्या मिलेगा, कोई मिलता नहीं है। तो कृपा ही ईश्वर की प्रवृत्ति का हेतु होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। इसलिए कृपेव कारणम प्रवृत्ति, कृपा ही प्रवृत्ति का कारण होता है, जैसे ईश्वर का होता है इसी प्रकार संत महापुरुष ज्ञानी का होता है। इसलिए उसका आप लोगों का दृष्टांत हमने नहीं दिया, पशु पक्षी का दृष्टांत दिया। जैसे अर्जुन की प्रवृत्ति है ना, तो अर्जुन की प्रवृत्ति उपदेश करने के बाद कैसी हुई, कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है युद्ध, तो कर्तव्य बुद्धि से जैसे प्रवृत्त हुआ, इसी प्रकार हम यदि प्रवृत्त होंगे तो हमारा चित्त शुद्ध होगा, इसलिए कर्म का उपदेश किया गया। तो 80,000 मंत्र में कर्म, कई प्रकार के कर्म होते हैं, नित्य कर्म होते हैं, नैमित्तिक कर्म होते हैं, और काम्य कर्म भी होते हैं, इस बात का आप ध्यान दीजिए पहले। तो नित्य कर्म क्या होता है, जिसको करना चाहिए, करने पर कुछ मिलता नहीं है, और नहीं करने पर दोष होता है, इसका नाम होता है नित्य कर्म। देखो नित्य कर्म, जैसे अहरहर संध्याम उपासित, रोज संध्या वंदन करना चाहिए, नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा, हाँ इसका नाम प्रत्यवाय, प्रत्यवाय दोष है, समझ में ना भाई। गुरु ने मंत्र दे दिया, आप मंत्र ले लिए, काहे के लिए मंत्र लिए, बोलने के लिए कि हाँ उन गुरु से हमने, ऐसे भी लोग होते हैं, अमुक गुरु से हमने मंत्र लिया है, बस इतना बोलते हैं, बस कुछ करते नहीं है, नहीं करेंगे मंत्र लिए हो और नहीं करेंगे तो क्या लगेगा, दोष लगेगा जरूर, समझ में ना। ये होता है नित्य कर्म। तो नित्य कर्म करते हैं इससे प्रत्यवा नहीं लगेगा, चित्त की शुद्धि होती है। और किसी निमित्त से श्राद्ध आदि करते हो, ये निमित्त से किसी करते हो, किसी की मृत्यु हो गई, स्वर्गवास हो गया, वो निमित्त आ गया, कुछ करते हो, पुत्र का जन्म हो गया, कुछ करते हो, नैमित्तिक कर्म हो गया। अरे काम्य कर्म होता है, काम्य कर्म होता है, जैसे सर्व काम योजित, सर्व की इच्छा से कर्म करते हो, राज्य की प्राप्ति से यज्ञ करते हो, वाजपेय जाग आदि करते हो, ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए उपासना करते हो, ये हो गया काम्य कर्म। लेकिन ध्यान दीजिए, काम्य कर्म का बहुत उपदेश होता है शास्त्र में, बहुत फल का कथन कर दिया गया। लेकिन विचार करने पर नित्य कर्म करने से चित्त की शुद्धि तो होती है, चित्त की शुद्धि के लिए ज्यादा भूमिका नित्य कर्म की। लेकिन ऐसा हो जाता है कि काम्य कर्म को भी यदि आप कर्तव्य बुद्धि से करते हो तब भी चित्त की शुद्धि हो सकती है, ये ध्यान देने की बात है। नहीं तो सकाम कर्म करता रहेगा करता रहेगा, कभी तो फिर चित्त की शुद्धि होगी नहीं, फिर जो ज्ञान का अधिकारी कैसे बनेगा, है ना। इसीलिए यहां पर ये समझना, अनुभव में भी आता है, देखो अनुभव में, मान लीजिए कोई शिक्षक है, अध्यापक है, विद्यालय में जाएगा और अध्यापन करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, तनख्वाह मिलेगा ना कि नहीं मिलेगा, तनख्वाह मिलेगा। लेकिन यदि उसको अपना कर्तव्य समझे, लोगों को शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है, ऐसा समझ करके करे तो तनख्वाह तो मिलेगा, हो गया ना। लेकिन तनख्वाह मिलने के साथ साथ उनका चित्त भी शुद्ध हो सकता है, केवल अध्यापन के बाद नहीं कह रहा हूं, आप पैसा कमाते हो इससे भी होगा, हाँ ध्यान दीजिए आप, और व्यापार करते हो इससे भी चित्त की शुद्धि हो सकती है। ये सिपाही का दृष्टांत दिया है ना, किसी को भून देता 10 आदमी को तब भी तनख्वाह मिलेगा ना, फिर भी चित्त की शुद्धि उनकी हो जाएगी। इसी प्रकार सभी, अच्छा ये भी ध्यान रखो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण भाई मंदिर में जाकर के अभिषेक करता है, शूद्र झाड़ू लगाता है, तो किसको ज्यादा फल मिलेगा। लेकिन शूद्र तो झाड़ू लगा रहा है, वो तो मंदिर के अंदर नहीं जा रहा है भाई, उसको तो कम मिलना चाहिए। कहते हैं ऐसा नहीं, कर्म का आकार अलग अलग है लेकिन कर्म का फल में कोई भेद नहीं होता है। तो ब्राह्मण विश्वनाथ में जाकर के अभिषेक करने पर, जल चढ़ाने पर जो फल मिलता है, शूद्र को झाड़ू लगाने पर भी वही फल मिल सकता है। हाँ, ये बहुत लोग शंका उठाते हैं, हमको शूद्र बना दिया, हाँ? ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्र में यह भी लिखा है कि शूद्र यदि मंदिर का ध्वज को, झंडा को देख लेगा तब भी वही फल मिलता है, ये हमारा शास्त्र बताता है। ये है कर्तव्य, कर्तव्य बुद्धि। अब अनुभव ले लो, आप जो है संत के पास जाते हो, गुरु आश्रम में जाते हो, है ना, तो गुरु आश्रम में जो भी आप कर्म करते हो तो क्या भावना होती है, भाई जो भी करता हूं मैं गुरु की सेवा करता हूं, भावना नहीं होती है क्या, होती है ना। तो मंदिर में कोई सेवा करता है तब भी गुरु की सेवा, हाँ भक्तों को पानी पिलाता है भंडारा में तब भी गुरु की सेवा हो। तो यदि गुरु के पास जाकर के वो भावना यदि हो सकती है, घर में क्यों नहीं हो सकती है, घर में आते तो भूल जाते हो, ये घर का काम है, वो तो आश्रम का काम है, वो तो गुरु का, ऐसा कुछ नहीं है। घर में भी वो भावना हो सकती है, यदि घर का मालिक संत को गुरु को बनाओगे अथवा घर का मालिक ईश्वर को बनाओगे तभी वो भावना हो सकती है। इसलिए पहले आपको बता दिया ये भावना जो शक्ति होती है ना भाव दृष्टि वो सबसे प्रधान है। वो जैसा भाव होगा आपको ऐसा फल मिल जाएगा। इसलिए यहां पर कठोपनिषद में कहने जा रहे हैं तुम कामना से प्रवृत्त न होकर के चारा और डंडे से प्रवृत्त न होकर लोभ और मोह, लोभ हो गया चारा समझ में ना, और भय हो गया कर्ण, डंडा हो गया। इसलिए तुम लोभ और भय से हट करके छोड़ करके एक कर्तव्य बुद्धि से तुम कर्म करोगे। यदि नहीं करोगे तुम पकड़े जाओगे जैसे नचिकेता का पिता। ये यहां पर चल रहा है और यहां पर एक विलक्षण बात बोलते हैं। यहां पर तो भगवान भाष्यकार जो है ना आचार्य को भी नमस्कार किया है और नचिकेता को भी नमस्कार किया, बड़ा विलक्षण है। इसमें लिखे हैं ओम नमो भगवते देवस्यताय मृत्युवे जमराज, उसको भी नमस्कार किया भगवान भाष्यकार ने किया। तो चलो गुरु को तो हम सब करते ही है, इसमें कोई नई बात है ही नहीं। लेकिन यहां पर लिखते हैं नचिकेता से च, भाई नचिकेता को भी हमारा नमस्कार है ना। इसको कहते हैं नम्रता। इसलिए हितोपदेश फास्ट प्राइमरी के कोर्स में ये पढ़ाते, ये तो बता दिया आचार्य देव भगवत। उसके बाद आता है विद्या ददाति विनयम। भाई देखो विद्या तब फलीभूत होगी जब हमारे अंतकरण में नम्रता आ जाए ना। ये माया ये जो ज्ञान के द्वारा भी फंसा देती कभी कभी है, ज्ञान से ही फंसा देगी ना। कैसे, हम इतने पढ़ लिए, हम इतने पढ़ लिए ना, तुम तो अभी पढ़ रहे हो, अभिमान हो गया कि नहीं। देखो ज्ञान का ही अभिमान हो गया ना, ज्ञान का अभिमान हो गया है ना। और ज्ञान किसी किसी को वैराग्य का अभिमान हो जाता है, हम तो पैसा छूते ही नहीं है लेकिन सारा हिसाब रखेगा है ना, झोले में कितने पैसे हैं सारा हिसाब रखेगा लेकिन पैसा छुएगा नहीं, बड़ा विलक्षण है। अथवा चलो पैसा का हिसाब भी नहीं रखता है ना, अब बोलेगा हम तो पैसे का हिसाब ही नहीं रखते हैं। हाँ ये भी अभिमान है, देखो बड़ा कठिन काम है ना। इसलिए कह दिया कि विद्या ददाति विनयम, विद्या से यदि विनम्रता आती हो तो समझना चाहिए कि हमारी विद्या ठीक है। इसलिए यहां पर भगवान भाष्य का है नचिकेता को नमस्कार, इसको कहते शिक्षा। इसलिए जिसको ज्ञान हो गया उनको तो साध्य की प्राप्ति हो गई, जब तक साध्य की प्राप्ति नहीं है तब तक साधन चाहिए, हो गया ना। जब तक आप लिख रहे हो तब तक कलम की आवश्यकता है, और लिख लिया तो कलम की क्या जरूरत है ना। ठीक इसी बगैर ब्रह्म ज्ञानी का तो ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, फिर भी जो ब्रह्म ज्ञानी लोग कर्म करते हैं करते हुए दिखते हैं तो उनके लिए साधन नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी के लिए कोई साधन नहीं होता, ना कोई विधि ना कोई निषेध, को विधि को निषेध, निस्त्रे गुण पति विचरताम, हाँ को विधि ही को निषेध। लेकिन वो काहे के लिए करते हैं, हम लोगों के लिए करते हैं। इसलिए ज्ञानी का जो साधन है वो उनका साधन नहीं है, वो शिष्य का साधन होता है, साधक का साधन होता है ना। ये बात यहां पर, ये जो कठोपनिषद है ये जानते हैं कृष्णा यजुर्वेदीय की है, कृष्णा यजुर्वेदीय। और कृष्णा यजुर्वेदीय में एक कट शाखा होती है, कट शाखा, और वो ऋषि का नाम भी कट है, तो ऋषि का नाम भी कट है और शाखा का नाम भी कट है, इसलिए इसका नाम हो गया कठोपनिषद। और यजुर्वेद के कारण इसका मंत्र भी यजुर्वेदीय मंत्र है, शांति मंत्र है, इसलिए पहले उच्चारण कर लेते हैं फिर उसके बाद प्रवेश करेंगे थोड़ा सा। ओम सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो गत वर्ष प्रथम अध्याय का विचार किया था हम लोगों ने, प्रथम अध्याय के तीसरी वल्ली का किया था, दो अध्याय है इसमें और एक एक अध्याय में तीन तीन वल्लियां हैं, तो कितनी वल्ली हो गई, छह वल्ली। तो तीसरी वल्ली का विचार हुआ था, इसकी ये कहानी है। देखो उपनिषद में जो कहानी होती है ना, कहानी का तात्पर्य कहानी में नहीं होती, कहानी का कुछ प्रयोजन दूसरा होता है। इसलिए यहां पर जो कहानी है, वक्ता है जमराज जी और श्रोता है नचिकेता, तो कहानी के माध्यम से जमराज ये बताना चाहते हैं अथवा श्रुति भगवती ये बताना चाहती है कि ज्ञान को धारण करने के लिए हमारा हृदय कैसा होना चाहिए। समझ में ना, जैसे जल को रखना है भाई, जल को रखना है घड़े में रखना है, और घड़े में यदि एक छिद्र रह जावे तो जल रहेगा नहीं रहेगा, समझ में ना। ठीक इसी प्रकार ये घड़ा कौन है जानते हो, ये परमात्मा ने हमको ये शरीर रूपी घड़ा दिया है अथवा बुद्धि रूपी घड़ा दिया है, समझ में ना। और इसमें अमृत रखना है, कौन सा अमृत, यहां पर ज्ञानामृत रखना है, और इसमें यदि एक भी छिद्र हो गया तो ज्ञान रहने वाला नहीं है, समझ में ना। इसलिए गुरु जो ना ठोक पीट करके घड़े को लेता है, शिष्य रूपी घड़े को अथवा शिष्य की बुद्धि रूपी घड़े को ना ठोक पीट करके लेता है गुरु, शिष्य बनाता है। और जब तक शिष्य नहीं बन जाता है, शिष्य नहीं बन जाता मतलब अधिकारी जब नहीं बन जाता, ज्ञानामृत को धारण करने का घड़े को जब तक बुद्धि को नहीं रख लेता है साधक, तब तक गुरु उसको शिष्य नहीं बनाता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया, ना पुत्राय ना शिष्याय च मतिम तद्यात्। जो पुत्र न हो और जो शिष्य न हो उसको ज्ञानामृत नहीं देना चाहिए, तो रहेगा नहीं ना, वो निकल जाएगा जैसे जल निकल जाता है। इसी प्रकार नचिकेता की बुद्धि कैसी है, जिसमें कोई छिद्र नहीं है, कोई छिद्र नहीं है, उस प्रकार की जो है बुद्धि रूपी घड़ा है। तो ऐसी बुद्धि रूपी घड़ा हम लोगों के पास है क्या, होगी कि नहीं, इसलिए ये संवाद है यहां पर। तो उसकी बुद्धि, छोटा सा बालक है जिसका नाम नचिकेता है, कुमार अवस्था में था वो, और उनका पिता जो है क्या नाम था, भाजश्रेवा उद्दालक, उसने क्या किया है कि यज्ञ कर दिया, वे यज्ञ, और यज्ञ में क्या है कि सबको दान देना है, अपना जितना भी है सर्वस्व दान देने की परंपरा है, विधान है। वो क्या कर दिया कि बच्चे के प्रति मोह था, इसलिए बच्चे को दूध चाहिए भी, और यज्ञ में जो दान देनी है गौ की पंडितों को, और बूढ़ी बूढ़ी जो गया है जो काम की नहीं है, तो ऐसी गया को दे दिया दान के रूप से, और बढ़िया बढ़िया गौ जो दूध देने वाली, हाँ वो रख दिया काहे के लिए, बेटे के लिए रख दिया। तो क्या समझना, ये संवाद कहानी काहे के लिए है, हम लोगों के लिए है। मोह यदि हो तो हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता है। कामना यदि हो, वो कामना यदि हो ना, व्यक्ति को क्या बना देती है, कामना चालाक बना देती है। कामना से व्यक्ति चालाक होता है, और चालाक हो गया तो उसको समाज बहुत बुद्धिमान व्यक्ति बोलते हैं। तो यहां पर बुद्धिमान का कोई काम नहीं है शास्त्र में, इस मार्ग में बुद्धिमान का कोई काम नहीं है, एकदम सरल, कोई अभिमान नहीं। और बालक जो छोटा सा बालक देख रहा है उसको, गाय को देख रहा है वो, और वो विचार करता है भाई देखो है ना, ये जो है उसको कहते हैं पुत्र है ना, है ना, जो पूम नामक नरक से जो तार करा देता है पिता को, उसको कहते हैं पुत्र। समझ में आया ना, पूम नाम नरकात त्रायते पुत्र, यही पुत्र का पुत्रत्व है, है ना। तो फिर जो आगे बोलता है, आगे का विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।